बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 11 जनवरी दिन शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। जेएनयू के छात्रों के साथ सहानुभूति जताने जेएनयू पहुंची अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। छात्रों के खिलाफ हिंसा और नागरिकता कानून के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री स्वरा भास्कर जैसे फिल्मी सितारे। सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों नजर आ रही हैं फिल्मी हस्तियां, रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे मशहूर फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा, लेकिन पहले करेंगे थोड़ा इंतजार और सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि अगर भारत की संसद चाहती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत में होना चाहिए और सेना को इस बारे में कोई आदेश मिलता है तो वो उचित कार्रवाई करेगी।
नदन बॉर्डर पे जहाँ तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट फाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है। और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
ये थे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद के शब्द। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना संविधान की शपथ लेती है और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही काम करती है। जनरल मुकुंद ने कहा कि न्याय, बराबरी, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत भारतीय सेना को हमेशा राह दिखाते रहेंगे। सेना प्रमुख ने ये बातें आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो अरब जगत में सबसे ज्यादा समय तक सुल्तान रहे। काबूस के चचेरे भाई हैतम बिन तारिक अल सईद उनके उत्तराधिकारी बने हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में काबूस की सीलबंद चिट्ठी खोली गई, जिसमें उत्तराधिकारी के तौर पर संस्कृति मंत्री और उनके चचेरे भाई का नाम था। ओमान के सरकारी टीवी चैनल पर नए सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद का शपथ ग्रहण समारोह प्रसारित किया गया।
بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कानून के सिद्धांतों का पालन करूँगा और अपनी पूरी क्षमता से लोगों के हितों के लिए काम करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए काम करूँगा। ये थे ओमान के नए सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। पीएम मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वें सालगिरह के जश्न में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से नागरिकता संशोधन कानून और NRC वापस लिए जाने की अपील की है। ममता शुरू से ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती आई हैं। ईरान के सरकारी टीवी रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सेना ने कहा है कि उसने गलती से यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराया था। इस विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान की तरफ से आए बयान में इसे मानवीय भूल कहा गया है। पिछले 3 दिनों से ईरान इससे इनकार कर रहा था, लेकिन अब सेना के बयान के बाद राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्वीट करके कहा है कि इस विनाशकारी गलती के लिए ईरान को घोर खेद है और इस भयावह त्रासदी के लिए जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बोइंग 737 फ्लाइट यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी। बुधवार को उड़ान के बाद इसे तेहरान के बाहरी इलाके में मार गिराया गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा के साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया बोल में, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। श्रोताओं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन कॉल करिए। हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 1811-7000 या 1800-102-7001। एक बार फिर नंबर सुनिए, 1811-7000 या 1800-102-7001। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ देश विदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके साथ ही CAA के समर्थन में भी देश विदेश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा होने के बाद इन विरोध प्रदर्शनों में एक तेजी देखने को मिली। CAA और NRC का विरोध कर रहे लोगों ने GNU में हिंसा का भी विरोध किया। उनका मानना था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाने का मामला है। वहीं एक दूसरे तबके का मानना है कि इस हिंसा में लेफ्ट की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो JNU के छात्रों की पढ़ाई से वंचित कर रहा था, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने से रोक रहा था। इस हिंसा और उससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुंबई में फिल्मी जगत की हस्तियां इसके समर्थन और इसके विरोध में अपनी राय जग जाहिर करती आई हैं। वहीं JNU में हिंसा के खिलाफ हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंची। तो सवाल ये उठता है कि सरकार के खिलाफ और उसके पक्ष में सड़कों पर क्यों नजर आ रही हैं फिल्मी हस्तियां? इसी विषय पर बात करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा जी, आपका बीबीसी इंडिया बोल में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
सर, हम अपने पहले श्रोताओं को बता दें कि अनुभव सिन्हा, जिन्होंने मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय दर्शकों को झकझोरा है, इन फिल्मों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 90 के दशक में फिल्मी दुनिया से जुड़े अनुभव सिन्हा ने भारतीय फिल्म जगत में एक लंबा सफ़र तय किया है और फिल्म निर्देशन की अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। अनुभव सिन्हा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि फिल्मी दुनिया की जो ये एक जो कुछ लोग हैं, जो एक तबका है, इन मुद्दों पर सड़कों पर उतरने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वो सरकार के जो सरकार वादे करते आई है, तो उसमें क्या उसको विश्वास नहीं है?
मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग उतरे। एक्चुअली भारतीय समाज के हर तबके से लोग उतरे और अलग अलग दिन अलग अलग बात का विरोध था। खासतौर पर जिस दिन की शायद आप बात कर रहे हैं, उस दिन JNU में जो बच्चों पर हिंसा हुई, उसमें हम लोग स्टूडेंट्स के साथ एक खड़े होने के लिए हम लोग सड़क पे आए थे, ये कहने के लिए आए थे। उस दिन की हमारी मीटिंग कोई भी राजनीतिक नहीं थी, किसी CA या NRC, मैंने बार बार वहां बोला भी
जी,
वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के राइट की, स्टूडेंट्स के हक के लिए हम लोग उतरे थे सड़क पे।
जी अनुभव जी, आप कह रहे हैं स्टूडेंट के हक के लिए सड़क पे उतरे थे, लेकिन उसी फिल्मी जो जगत है, उसी फिल्मी दुनिया के कुछ लोग हैं जो ट्विटर पे अपने विचार रखते रहते हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं जो उस हिंसा को लेकर कहते हैं कि नहीं, वो जो लेफ्ट का छात्र संघ है, छात्र संगठन हैं, उनकी ये सारी की सारी, उनकी वजह से भी ये सारी हिंसा हुई। तो एक तरफ वो तबका भी है, उस तबके को लेकर आप क्या कहते हैं?
मतलब मैं वहां था नहीं, लेकिन जितना भी कुछ समझ में आया है देख के
जी,
कुछ चीजें बहुत प्रत्यक्ष होती हैं
जी।
और अब जाहिर है कि पुलिस अपनी एक पूरी जांच पड़ताल करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा और एक फैसला होगा
जी।
लेकिन जो प्राइमा फेसा है जिसको बोलते हैं, वो देख के साफ समझ में आ रहा है कि कहानी है क्या। और मालूम सबसे बड़ा नुकसान इस बात का ये हुआ, और मेरे ख्याल से ये हिंसा हुई भी इस कारण से कि स्टूडेंट जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे ना, जिस मुद्दे के लिए कर रहे थे, वो आंदोलन वो मुद्दा दब गया। वो लोग निकले थे, वो लोग आंदोलन कर रहे थे फीस बढ़ाए जाने के ऊपर
जी।
और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दीपिका पादुकोण को, तो सोचिए कि उस आंदोलन का जो कारण था, उसकी यात्रा कहां से कहां पहुंची। और इस पूरे प्रोसेस में नुकसान एक्चुअली स्टूडेंट्स का हुआ, फीस के बारे में हम अब भी बात नहीं कर रहे, और अभी भी गरीब आदमी के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है हम सब मिलकर उस विषय पर बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि दीपिका पादुकोण को आना चाहिए, इसको सड़क को उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बेकार की बात है।
जी अनुभव सिन्हा जी, हम आपके साथ बिल्कुल बात करते रहेंगे, हमारे कुछ श्रोता हैं, हम उनकी भी राय सुनना चाहेंगे, वो क्या अपनी राय रखते हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर।
हेलो
जी, मैं जान सकता हूँ हमारी किससे बात हो रही है?
हेलो
जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें?
हाँ जी सर, मैं जम्मू से पुंछ से मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ सर।
मोहम्मद शफी साहब, बताएं आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर?
सर बात ये है कि मेरा जैसा गरीब आदमी की आवाज कौन सुनेगा? सुपर स्टार तो ये हमारे देश के जो महान हस्तियां हैं, ये महान हस्तियां अगर गरीब लोगों के साथ या जेएनयू के स्टूडेंट के साथ नहीं रहेंगी तो रहेगा कौन? मेरे जैसे आदमी की आवाज कौन सुनेगा? इन लोगों की, ये तो एक दुनिया के माने हुए लोग होते हैं, इनको पूरा देश जानता है, इनका साथ रहना, जेएनयू के साथ उन लड़कों के साथ रहना, उनकी आवाज को बुलंद करना, ये स्टार लोग जो हैं, इनकी ये इनका फर्ज बनता है।
लेकिन शफी साहब जी, शफी साहब, लेकिन वहाँ लड़ाई तो दो छात्रों के गुटों में हुई है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं?
हाँ सर, बात ये है कि दो गुटों के दरमियान में हुई है, तो लेकिन जो जो लेफ्ट वाले वो जो उनका तो कोई कसूर ही नहीं है।
ये कैसे कह सकते हैं आप? ये तो पुलिस को तय करना है, पुलिस की जांच को तय करना है।
देखो जी, पुलिस की जांच को अगर तय करना है तो वो तो तय करेगी, लेकिन स्टार का होना ये जरूरी है ऐसे लोगों का जो है देश के अन्याय जहां पर होता है इनका फर्ज बनता है, और हम इनका पूरा समर्थन करता है, देश पूरा समर्थन करता है जो स्टार लोग हैं इनकी।
जी ठीक है शफी साहब की हमने राय सुनी, हम अगले कॉलर को लेते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। जी
Hello.
हम जान सकते हैं हमारी किससे बात हो रही है? आप बताएं आप कहां से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है?
हाँ सर नमस्कार, सर मैं शैलेंद्र कुमार सुमन बोल रहा हूँ।
जी शैलेंद्र जी, बताएं आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर?
सर मैं ये मुद्दे पे, सर मैं तो एक तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर मैं कॉल बहुत दिनों से लगाना चाह रहा था पर रिसीव नहीं हो पा रहा था
जी।
और मैं इस मुद्दे पे दीपिका मैम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी एक्टर है इसके विषय में बाहर आते, जो गलत है, गलत हुआ है जेएनयू पे, उसके विषय में सभी एक्टर को खुल के बोलना चाहिए कि स्टूडेंट अपने हक के लिए जब जहाँ पर अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और उस बीच में कोई बाहर से आके उसको हमला करके जख्मी कर देता है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है सर। और एक्चुअली सर हम इस बीच में हम कुछ वीडियो भी देखे हैं, उसमें जो ये आईसी घोष है उस पे पता चल रहा है कि उस पे भी मुकदमा दर्ज हो रहा है
जी। तो मुकदमे तो दोनों तरफ दर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों के नाम बताए हैं उसमें अलग अलग छात्र संगठनों के लोग हैं।
तो सर मैं ये नहीं जानना, ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब ये घोष, ये जो जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है उन पे जब हमला होता है और उन पे ही प्राथमिक दर्ज होता है, ये कहाँ की न्याय है सर?
जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र साहब अपनी राय रखने के लिए। हम अब वापस रुख करते हैं फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा की तरफ। अनुभव जी, आपने जैसे हमारे दो कॉलर्स को सुना, इन्होंने दीपिका की बात की जो अभी शैलेंद्र थे, आप फिल्मी दुनिया से ही आते हैं और इतने मशहूर फिल्म निर्देशक हैं, आपकी दो फिल्मों ने, अभी हालिया दो फिल्मों ने बहुत प्रसिद्धि कमाई है, सामाजिक मुद्दों पे एक बड़ा सटायर है वो। दीपिका जब जेएनयू गई तो एक तबके ने उनकी तारीफ की, एक तबका उनकी आलोचना कर रहा था, कुछ कह रहा था इससे उनको नुकसान होगा क्योंकि जो अभी उनकी फिल्म रिलीज हुई है छपाक, वो उसकी प्रोड्यूसर भी हैं। आप लोग, एक तबका, फरहान अख्तर जैसे लोग और अनुराग कश्यप जैसे लोग जब ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है, या इस पर आप क्या सोचते हैं?
किसको नुकसान हो सकता है?
आपकी फिल्मों को, आपके करियर को, जो कहा जा रहा है।
शायद बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। फिल्में अच्छी होती हैं तो चलती हैं, और इन सब चीजों से एक्चुअली बहुत मार्जिनल असर पड़ता है, अगर पड़ता है तो। ऐसा कोई भयंकर असर नहीं पड़ता है।
लेकिन
हाँ, ये जरूर होता है कि आप स्पेशली आज के दौर में कि जब आप सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो वो एक चलन में नहीं है, और उसमें मतलब एक नई साहस की बात थी कि दीपिका ने ऐसा किया, लेकिन मैं फिर वापस घूम के उसी जगह पे आता हूँ कि ये दीपिका के बारे में है ही नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, अनुराग कश्यप के बारे में नहीं है, फरहान अख्तर के बारे में नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स के बारे में या स्टूडेंट्स की मांग के बारे में है कि फीस का क्या हुआ। और मतलब याद करें, अगर आप 1973 में गुजरात में गुजरात नवनिर्माण आंदोलन एक एक कैंटीन में कॉलेज कैंटीन में मेस की फीस बढ़ गई थी, उसकी वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ था और गुजरात की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। अरुण जेटली साहब उस पूरे आंदोलन के नेता थे, वो बने अरुण जेटली वहां से। तो मतलब ये तो स्टूडेंट्स की जो जो आंदोलन होते हैं वो तो इतने ज्यादा वैलिड होते हैं, उनकी बात में इतना दम होता है, उनको किसी और स्टार की आवाज की जरूरत नहीं है।
लेकिन अनुभव जी, अपने आप में जी अनुभव जी, हमने लेकिन देखा है, आपने 73 की बात की, एक ऐसा समय भी आया था इमरजेंसी के समय जब फिल्म निर्देशकों को बहुत सारी पाबंदियों को झेलना पड़ा था, देवानंद साहब ने एक अपनी पार्टी भी बना ली थी, उसके साथ भी उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। तो क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इस एक तबके को नुकसान हो सकता है, या जो तबका जो सरकार का समर्थन कर रहा है उससे उसको नुकसान हो सकता है?
मतलब जब फासिस्ट तरीके से जब सरकार बिहेव करती है, जो कि 75 में कांग्रेस सरकार ने बिहेव किया था, या जैसा अभी उसके अंश देखने को मिल जा रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है, होता है, लेकिन फिर वो आपका आपकी चॉइस है कि आप वो खतरा लेने को तैयार है या नहीं।
यानी कि अनुभव सिन्हा ये खतरा लेने को तैयार थे तभी सड़कों पर आए और तभी बोल रहे हैं।
हाँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकारें इन सब चीजों से, मतलब ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, हमारी एक डेमोक्रेटिक समाज है, उसमें ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, और मेरे देश का कानून और मेरे देश की डेमोक्रेसी जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करती है।
जी, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है। अनुभव सिन्हा जी, आप इतने शानदार फिल्म निर्देशक हैं, मैं इन ये जो हमारा मुद्दा है कि फिल्मी हस्तियां क्यों उतर रही हैं, उसके साथ साथ मैं आप पे आना चाहूँगा। आपने अपना फिल्म निर्देशन तुम बिन से शुरू किया, जो एक रोमांस फिल्म थी, एक लव स्टोरी थी, काफ़ी फिल्में उसके गाने बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए, उसके बाद आपको पहले भी कहीं देखा है, फिर 10, तथास्तु, कैश जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, फिर आपने रावण बनाई जिसमें शाहरुख खान मुख्य किरदार में थे, जो शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। उसके बाद 2018 में हम देखते हैं कि आप मुल्क जैसी फिल्म बनाते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बनाते हैं। ये लव, रोमांस और एक्शन से होते हुए एक सांप्रदायिक टकराव और फिर उसके बाद एक जातीय भेदभाव, ये इन मुद्दों की ओर आप कैसे आ गए? ये आपने अपने सिनेमा में कब, कैसे सोचा कि ये आना चाहिए? क्योंकि 2001 में हम देखते हैं कि आप तुम बिन बनाते हैं और 17 साल बाद आप मुल्क बनाते हैं, ये क्या वजह है?
वो एक्चुअली मेरी जड़ें हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ में पढ़ा हूँ, तो चिड़िया कितना भी उड़ ले आसमान में दूर दूर तक, फिर आके तो अपने पेड़ पर ही बैठती है ना।
जी, लेकिन ये क्या क्या समझा जाए, क्या इसका, इसके जो बीज जो पड़ गए थे इन जैसी फिल्मों के, तो क्या ये बीज पहले से ही आपके जहन में चल रहे थे?
जी हाँ, बचपन से हैं मेरे ख्याल से ये सारे, मतलब सांप्रदायिक भेदभाव को लेके, चूंकि जैसे मैंने बताया बनारस में बड़ा हुआ, जहाँ पे मैं मेजोरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा था, फिर मैं AMU पढ़ने गया जहाँ मैं माइनॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा था, तो दोनों पक्ष देखे और दोनों संप्रदायों के बीच में एक मुसलसल जो मतभेद रहा है वो भी देखा है, लोगों से बात करने का, रीजनेबल बातचीत करने का मौका मिला, तो ये सब चीजें रही है अपने पास।
तो यही एक आज है कि जो आप CA जैसी और छात्रों के खिलाफ हिंसा जैसी बातों पर भी आप खुलकर बोल रहे हैं। चलिए अनुभव जी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हम अपने कुछ श्रोताओं को भी लेना चाहेंगे, वो उनकी राय जानना चाहेंगे, वो क्या कह रहे हैं। जी
हाँ,
हम जान सकते हैं हमारी किससे बात हो रही है?
हाँ जी सर जी, मैं पूछत से अरुण बगरे बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से।
अरुण जी, आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पे, हमें बताएं।
हाँ, मैं दीपिका पादुकोण का क्या है, उसको अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, उसको नुकसान नफे की वो चीज नहीं सोचती उस टाइम पे, जो में बह जाते हैं लोग, उन्हों नफा नुकसान की बातें नहीं सोचते, आगे क्या होगा, वो अपने उसके जो ख्याल आया उसने किया सर। बस यही मेरा कहना है
जी। और आप आगे कुछ नहीं सोचते हैं इस मुद्दे पे, जो छात्रों में दो तबके बने हुए हैं और या नागरिकता कानून के खिलाफ या नागरिकता कानून को लेकर सरकार कुछ कहती है?
वो तो सभी तरफ है सर जी, वो नागरिकता कानून और उसके एक जैसे नाने की दो बाजू होती है, वैसा है ये सब चलता है ये। हाँ जी
जी, चलिए रुख करते हैं एक अपने अगले कॉलर की ओर और जानते हैं उनका क्या कहना है।
सर नमस्कार
जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
महेंद्र चौधरी सर।
महेंद्र चौधरी, कहाँ से बोल रहे हैं महेंद्र जी आप?
मैं जिला बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर
जी। बाड़मेर से, बताएं आप क्या सोचते हैं?
सर मैं ये सोचता हूँ भाई, पढ़ाई अपनी जगह है, सब लोग आज की तारीख में सब लोग या तो कोई नेहरू बनेगा, महात्मा गांधी बनेगा या गोडसे बनेगा, विवेकानंद कोई नहीं बनना चाहता है। विवेकानंद जैसे आराम से देश में भ्रमण करें और पढ़ाई करें, लेकिन बेवजह ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं। और दूसरा दोष है मीडिया का, मीडिया सर ऐसी चीजें दिखाता है जो बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बेवजह बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी भी खराब होती है पढ़ाई सर। और दूसरा ये फिल्मकार है जो हमेशा अक्सर जो फिल्में होती है उसमें अक्सर छेड़छाड़ करते हैं, और हमारे ये महाराजा सूरजमल की एक फिल्म रिलीज हुई थी उसमें भी जो हमने पढ़ा है इतिहास आज तक, उसमें वो बिल्कुल गलत दिखा रहे सर।
किस फिल्म की बात कर रहे हैं आप?
सर जो महाराजा सूरजमल रिलीज हुई थी, अनुराग कश्यप की फिल्म थी ना।
अनुराग कश्यप जी की कौन सी फिल्म थी?
महाराजा सूरजमल और वो शिवाजी महाराज वाली वो फिल्म थी ना, बीच में कुछ टाइम आंदोलन हुए थे।
अच्छा
सर, अक्सर ये फिल्म
गुलाल, गुलाल की बात कर रहे हैं।
गुलाल में इस तरीके का, हमारे साथ मशहूर फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप
पूछ। सिन्हा साहब से मेरा सवाल है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फिल्मों में बहुत काफी जो हकीकत होती है वो कम दिखाई जाती है, क्या कारण है सर?
कौन सी हकीकत आप बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताएं। क्या आप पद्मावत जैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ भी काफी हिंसा हुई थी?
नहीं नहीं, ये सर अभी दो महीने पहले इसका ये महाराजा सूरजमल जो हमारे राजस्थान के भरतपुर के महाराजा थे उन पे रिलीज हुई थी, उनका गलत तथ्य दिखाए गए थे, जहाँ उसने हमेशा सजगता की थी, हमने आज तक इतिहास में पढ़ा है जहाँ तक उन्हें सजगता की, लेकिन जो फिल्मों में बताता वो बिल्कुल उसके उल्टा बता रहे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय के लिए, बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, जान लेते हैं कौन है। जी मैं जान सकता हूँ मेरी किससे बात हो रही है?
मैं डॉक्टर आर के गुप्ता घाटमपुर से बोल रहा हूँ
जी।
सर पहले तो आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आर के गुप्ता जी।
और इसके अतिरिक्त ये कहना चाहेंगे कि हमारे चाहे वो फिल्मी स्टार हूँ जो भी हैं, अब हम लोगों को राष्ट्रीय हित में, भले ही कुछ सरकार की भी गलती है इसमें जो जीएनओस का मामला हुआ, लेकिन हमारे जो सिन्हा साहब हैं, मैं खास करके सिन्हा साहब से और सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हिंसा से कोई रास्ता निकलने का नहीं है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो चाहे जो, तो ऐसा सद्भाव पैदा किया जाए।
लेकिन आरके गुप्ता जी, हिंसा का तो समर्थन किसी ने भी नहीं किया है, हमारे साथ अनुभव सिन्हा जी हैं, इन्होंने भी कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया है।
नहीं समर्थन तो नहीं किया, लेकिन एक दिक्कत आई
हाँ।
कि अभी जो जेएनओ में हुआ उसमें हो सकता है सरकार की, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में अनभिज्ञ हूँ, हो सकता है सरकार की भी गलती रही हूँ, और छात्रों को भी चाहिए कि अगर वो सद्भाव पूर्वक कोई गलतियां भी हैं तो सरकार बात करना चाहती है, सरकार को बात करना चाहिए और सब लोग सद्भाव पूर्वक हो करके तभी राष्ट्र का निर्माण, अन्यथा इस प्रकार से जो उत्साह होगा कि एक दूसरे को नकाबपोश पर जैसे कि हमला हुआ, तो मैं समझता हूँ इससे तो केवल सद्भावनाएं बिगड़ेंगी, जैसा कि हमारे फिल्म निर्देशक भी अच्छे भूमिका अदा करते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आर के गुप्ता जी। वापस आते हैं अनुभव सिन्हा जी के पास। अनुभव सिन्हा जी, इन्होंने सद्भावना की बात की और हम देखते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर और इन सब मुद्दों को लेकर फिल्मी दुनिया में अनुपम खेर, जूही चावला और एक और निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री, आप जानते ही होंगे, ये एक तबका है जो नागरिकता संशोधन कानून और जो इस हवा को साजिश बताते हैं। तो क्या ये फिल्मी दुनिया क्या बटी हुई है, जैसे अभी आर के गुप्ता जी कह रहे थे कि सद्भावना नहीं है?
मतलब कोई भी उद्योग में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं ना, मतलब कोई कोई बॉलीवुड कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है कि सब लोग एक तरीके से सोचते हैं, सब अलग अलग तरीके से, सबके अलग सामाजिक और राजनीतिक सोच है
जी। यानी कि फिल्मी दुनिया में जी अगर बटा हुआ है तो मतलब ये दो तबके बन गए हैं, यानी कि फिल्मी दुनिया में हम माने कि दो तबके हैं, एक जो समर्थन में होता है और एक विरोध में होता है।
जाहिर है फिल्मी दुनिया में जो हर दुनिया में आपके अपने दफ्तर में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होंगे
जी,
सबकी एक विचारधारा थोड़ी हो सकती है।
लेकिन अनुभव सिन्हा जी
मतलब ये तो अच्छी बात तो ये थी कि जब कांग्रेस पार्टी जो शुरू में थी हिंदुस्तान की आजादी के समय, उसमें ये अलाउड था कि लोग अलग अलग विचारधाराओं के भी लोग थे, कुछ लोग ज्यादा राइट थे, कुछ लोग ज्यादा लेफ्ट थे, कुछ लोग ज्यादा सेंटर थे, तो इवन पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो जगह होनी चाहिए कि सबकी विचारधारा एक दूसरे से थोड़ी भिन्न हो।
तो ये फिल्मी दुनिया में एक सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता है जो आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त
था? ये सामंजस्य नहीं कहते इसको, ये तो फिर तानाशाही हो जाएगी कि सारे एक से सोचें।
लेकिन
थोड़ी होता है,
लेकिन जो चुप हैं उन पे क्या कहेंगे? एक तबका है जो आपने देखा होगा कि आमिर खान का एक पुराना बयान आया था, जब उनके बयान के बाद खूब उनको ट्रोल किया गया, जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को डर लगता है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसी के बाद एक अपने बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन से लेकर जितने खान टिकड़ियाँ हैं वो भी इस मामले पे चुप हैं, मतलब एकदम तटस्थ हैं। तो इन तटस्थता पे, इन मुद्दों पे तटस्थ रहने पे, इन मुद्दों पे चुप रहने पे, इस पर भी आपकी कुछ राय होगी?
मेरी राय ये है कि सबसे पहले अन्ना हजारे की राय पता करके मुझे बताइए वो क्यों चुप है। वो तो सड़क पे आ गए थे ना, जब इतना उनको इतने सारे झूठे आरोप लेकर के वो आ गए थे सड़क पे, वो कहाँ है, वो क्यों चुप है? हाँ, मुझे शाहरुख की तो राय जाननी नहीं है, आमिर की भी नहीं जाननी और सलमान की भी नहीं जाननी और मिस्टर बच्चन की भी नहीं जाननी। मुझे अन्ना हजारे की राय जाननी है, मुझे अडवाणी जी की राय जाननी है कि आपने यही पार्टी बनाई थी क्या 1980 में? उसके उनके लोगों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं? उनके बारे में बात कीजिए, उन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने एक विजन देखा था हिंदुस्तान का जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो लोग क्या सोच रहे हैं? जोशी जी क्या सोच रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या सोच रहे हैं, शिवराज चौहान सिंह जी क्या सोच रहे हैं, ये लोग बोलने चाहिए नहीं क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, यही वो पार्टी है जो उन्होंने बनाई थी
जी। अब चलते चलते एक कॉलर और ले लेते हैं अनुभव जी, हम जानना चाहेंगे हमारी किससे बात हो रही है।
सर अतुल शुक्ला बोल रहा हूँ मैं, संगरिया।
अतुल जी जी बताएं आपकी राय क्या है।
सर दीपिका पादुकोण का वहाँ जाना, मुझे लगता है सर ये जब कोई फिल्म का प्रमोट करना होता है तो किसी ऐसे मुद्दे में कूद जाते हैं हमारे स्टार जो है, जैसे अभी शाहरुख जी की कोई मूवी आती है तो वो कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं, इसके फिल्म का प्रमोशन करते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये
शाहरुख जी की आपने बात की, शाहरुख जी ने ऐसा कब किया?
सर एक बाला ठाकरे के जब थे उस टाइम में कोई मूवी आई थी सर, उनकी मूवी तो याद नहीं है मुझे, मतलब ये एक ट्रेंड सा हो गया आज की डेट में अपनी मूवी को हिट करने का या उसको उसका व्यू बढ़ाने का।
लेकिन इस पे तो कहा जा रहा था कि उनको नुकसान ही होगा, अतुल शुक्ला जी ये तो कहा जा रहा है कि दीपिका को नुकसान ही होगा जिस तरीके से उनके खिलाफ बायकॉट चलाया गया। जी
बायकॉट तो हुआ सर, जहाँ तक एक ट्रेंड है अपने बॉलीवुड का आज के 2-4-10 सालों में, ये अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। सर जेएनयू में जो मामला हुआ है वो हमें लगता है कि वो स्थानीय था, क्योंकि वो फीस वृद्धि को लेके था और उसपे एक कमेटी बनी हुई है, जांच भी कर रही है, वो उसपे सेटलमेंट भी हो गया है।
जी अतुल शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव सिन्हा जी हमारा कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और आपने इतना वक्त दिया है हमें, जाने से पहले पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी इन्होंने अतुल शुक्ला जी ने कहा कि फिल्म प्रमोशन के लिए होता है, कोई कहता है कि उस तबके के साथ, उस ग्रुप के साथ जाने के लिए इस तरीके की बयानबाजियाँ होती हैं या ट्विटर पे इसलिए लोग लिखते हैं क्योंकि उनको पेड प्रमोशंस होते हैं। आप क्या सोचते हैं इन जैसे मुद्दों पर फिल्मी हस्तियों का बोलना कितना ज़रूरी है?
फिल्मी हस्तियां देश की नागरिक हैं, उनको जिस विषय पर उनको महसूस होगा वो बोलेंगे, और जो लोग ये बात करते हैं कि हम लोग कूद पड़ते हैं पब्लिसिटी के लिए, उनको अंदाजा नहीं है कि एक फिल्म बनाने को 1.5-2 साल लगता है, मिनिमम 20-30-40 करोड़ रुपया लगा होता है दांव पे। उस वक्त आदमी किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी में से बचने से
जी जी जी
मैं क्यों किसी कंट्रोवर्सी में पड़ूं।
जी जी अनुभव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, मोहम्मद शाहिद को दें इजाजत, नमस्कार।